ओम शांति। क्रिश्चियन धर्म में एक बहुत सुंदर कहानी है जिसका नाम है एक्ट्स ऑफ सेंट पॉल एंड थेकला। एक्ट्स ऑफ सेंट पॉल एंड थेकला। बहुत समय पहले एक कन्या थी जिसका नाम था थेकला। उस कन्या का किसी युवक से विवाह होने वाला था कुछ दिनों के बाद। एक दिन वो कन्या अपनी बालकनी में खड़ी थी और जब बालकनी में खड़ी थी तब वहां से सेंट पॉल जो कि जीसस क्राइस्ट के शिष्य थे, जीसस क्राइस्ट जा चुके थे और उसके बाद सारे विश्व में उनका पैगाम देते हुए घूम रहे थे। तो सेंट पॉल एक गीत गाते हुए जा रहे थे। उस गीत का ऐसा अर्थ था कि जो प्रभु के प्रति समर्पित है उसका जीवन पवित्र है, उसका शरीर पवित्र होना चाहिए। खुलेआम सड़क पर वो ये गीत गाते घूम रहा था और सेंट वो जो थेकला होती है वो उस गीत को सुनती है। 3 दिन लगातार वो सुनती रहती है और सेंट पॉल अपनी मस्ती में मगन और प्रभु के गुणगान करते हुए वो गीत गाते वहां से गुजरता है और वो गीत सुनते 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 उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है। उस गीत में होता है कि जो प्रभु के प्रति समर्पित है उसका शरीर पवित्र होगा। तो जैसे ही वो गीत सुनती है और लगातार सुनती है और एकाग्रता से सुनती है उसके मन में संकल्प आता है कि मुझे भी अपना जीवन भगवान के प्रति देना है और इसलिए मैं अपने शरीर को अपने मन को चेष्ट अर्थात पवित्र रखूंगी। ऐसा उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है 3 दिन में। तो सुनते सुनते वो संकल्प करती है कि मैं अपना जीवन ईश्वर के प्रति अर्पित करती हूं। अभी उसकी शादी होने वाली थी और जैसे ही उसकी मां को पता चलता है इसमें कुछ चेंज आ रहा है और ये वो सड़क पे चलने वाला फकीरों जैसा घूमने वाला उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो रही है। तो तुरंत उसकी मां उसको समझाती है और उसका होने वाला पति उसको समझाता है, परंतु तब तक वो बहुत आगे जा चुकी होती है। अपने मन से अपने संकल्पों से वो भगवान को जैसे अपना सर्वस्व मान चुकी होती है। उस पॉल को भी, सेंट पॉल को भी समझाया जाता है कि यहां से चले जाओ, परंतु वो तो अपनी मस्ती में होता है। परिणाम स्वरूप उसकी मां, थेकला की मां और होने वाला पति दोनों ही ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं ताकि वो रुक जाए, क्योंकि अब उसका शादी में कोई रस नहीं था। और जब ये नहीं मानती तो लास्ट में बहुत सारी बातें होती है और उस थेकला को सजा सुनाई जाती है। बहुत सारे षड्यंत्र बीच में होते हैं। वो राजा के पास जाकर झूठी झूठी बातें बनाकर उसकी मां भी उसमें मिल जाती है और लास्ट में सेंट तो अभी नहीं है, थेकला को सजा सुनाई जाती है कि सारे गांव के बीच में एक खंबे में उसको बांधेंगे और जिंदा जला देंगे, ताकि उसका पति होने वाला पति कहता है कि संसार की ये जो गांव की बाकी स्त्रियां हैं वो भी सबक ले, क्योंकि उस धर्म में चैस्टिटी ब्रह्मचर्य इतना खुलेआम प्रचार करने वाला वो सेंट पॉल था, जो कहता था ही हु इज चेस्ट इन माइंड एंड बॉडी शैल इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड, परमात्मा के राज्य में वही आ सकता है जिसका मन और जिसका शरीर दोनों पवित्र है। इसलिए उस थेकला को एक खंभे से बांध दिया जाता है और आग लगाई दी जाती है ताकि बाकी स्त्रियां सबक सीखे, परंतु अचानक जब आग लग जाती है अचानक बारिश हो जाती है और वो थेकला बच जाती है और वहां से चली जाती है। वहां से जाकर वो किसी दूसरे गांव में जाती है और सेंट पॉल उसे मिलते हैं और दोनों वहां से निकलकर कहीं और पहुंचते हैं, परंतु वहां फिर दिखाया है कोई एक बहुत बड़ा अधिकारी जो कि उसके पति से मिला हुआ है। वो फिर कुछ करने की कोशिश करता है, फिर से थेकला उसका उसके चंगुल से छूटती है। उसको लगता है इस स्त्री ने मेरा अपमान किया है, फिर से झूठी कंप्लेंट्स होती है और सेंट पॉल को भी बहुत सजा होती है, कोड़ों से मारा जाता है और थेकला को दूसरी सजा सुनाई जाती है कि एक अखाड़ा है जहां ऊपर लोग बैठेंगे और बीच में भूखे तीन शेर और उसके बीच में उस थेकला को ढकेल दिया जाता है ताकि सारे गांव के सामने ये दृश्य सब लोग देखे कि कैसे इस तरह की चलन या हरकत से क्या होता है। तो तीन शेर में से दो शेर होते एक शेरनी होती है और वो भूखे और उसके बीच में उसके अकेले को डाल दिया जाता है और लॉक कर दिया जाता है। परंतु दूसरा चमत्कार, वो जो शेरनी होती है वो बीच में आ जाती है और थेकला को बचाती है। वो दो शेर आक्रमण नहीं कर पाते, ये दृश्य सब लोग देखते हैं और वो फिर से वहां से छूटती है और फिर वो संकल्प करती है अब मैं किसी मनुष्य गुरु के पास नहीं जाऊंगी और वहीं से पानी लेती है और अपने आप को बैप्टाइज करती है। बैप्टाइज अर्थात क्रिश्चियन धर्म में बाप्तिस्मा जिसको कहते हैं, स्वयं ही स्वयं को तिलक देकर घोषणा कर देना कि मैं आज से उसकी हो गई, परमात्मा की। फिर से वहां से छूटती है, मिराकुलस एस्केप ऑफ थेकला, वहां से छूटती है और फिर एक तीसरी जगह जाती है और कहानी है कि उस तीसरी जगह पर वो लगभग 70 साल तक रहती है और उसकी इस पवित्रता की धारणा के कारण, उसके इस ब्रह्मचर्य के कारण उसमें अलौकिक शक्तियां निर्माण होती है, प्रकट होती है। धीरे धीरे हीलिंग पावर आ जाती है कि जिसको भी वो हाथ लगाती है वो ठीक होता है। कई सारे मरीज उसके पास आने लगते हैं और वो एक गुफा में रहती है अकेली लास्ट तक 70 साल तक उस गुफा में। जब उसकी उम्र 90 वर्ष की हो जाती है और उसकी बहुत चारों तरफ नाम हो जाता है तो वहां के जो लोकल लोग पंडित या डॉक्टर्स उनको ईर्ष्या होती है, हेलिनिस्टिक फिजिशियंस उनको इतनी ईर्ष्या होती है कि उनके सारे मरीज इसके पास जा रहे हैं और उनको पता चलता है ये जो दैवी शक्ति थेकला को प्राप्त हुई है, जो पहले थेकला थी और अभी सेंट थेकला के नाम से जानी जाने लगी है, तो वो सोचते हैं इस स्त्री का ब्रह्मचर्य, इस स्त्री की पवित्रता को फिर भंग करना है। तो वो ऐसे 3-4 युवकों को भेजते हैं उसके पास उसका शील भंग करने के लिए, जबकि उसकी आयु 90 वर्ष की होती है तब। और दिखाया है कि जैसे वो युवक आते हैं उस गुफा में, एक तीसरा मिरेकल, एक तीसरा चमत्कार होता है। जैसे ही वो बढ़ने लगते हैं और वो देखती है, वो आगे बढ़ती है और वो गुफा से एक नया द्वार खुलता है और एक दीवार आके नीचे गिरती है। वो लोग उस तक नहीं पहुंच पाते और ऐसा मान्यता है कि वो जैसे शरीर समेत उसमें समा जाती है। आज भी एक जगह है विदेश में जहां वो गुफा है। ये कहानी क्रिश्चियन धर्म की कहानी है, ये कहानी पवित्रता की कहानी है। उस एक साधारण सी स्त्री ने जो पवित्रता को अपनाया, उसके बाद उस पर इतने अत्याचार हुए, हमने कुछ ही बताए, और भी बहुत सारी बातें हैं, परंतु वो सभी चीजों को पार करती गई और बाद में क्रिश्चियन धर्म ने उसे सेंट की पदवी दी, सेंट थेकला। और इस कहानी को जिस किताब में डाला है उसे कहा है एक्ट्स ऑफ सेंट थेकला एंड सेंट पॉल। संसार की स्त्रियां, संसार के लोग, जिसने पवित्रता को अपनाया, उनमें अलौकिक शक्ति आ गई और परमात्मा छत्र छाया को उनको हर समय अनुभव हुआ। तो आज हम चर्चा करेंगे एक तपस्वी ब्रह्मा कुमारी जीवन इस विषय पर। एक तपस्वी ब्रह्मा कुमारी जीवन, ये जीवन नव जीवन है। परमात्मा को दिया हुआ जीवन है। तपस्या के लिए दिया हुआ जीवन है। और इस जीवन में यदि वह दिव्यता नहीं, वह तपस्या नहीं, तो ऐसा लगेगा कुछ कुछ रह गया है, कुछ कुछ खालीपन है। एक श्रेष्ठ योगिनी के लिए, तपस्विनी के लिए ऐसी कुछ बातों की आवश्यकता है, ऐसी कुछ धारणाओं की आवश्यकता है। संसार में ऐसी बहुत सी योगिनी तपस्विनी आत्माएं हुई है। हर धर्म में, हमने क्रिश्चियन धर्म की कहानी सुनाई, ऐसा ही इस्लाम में सूफियों में राबिया है। राबिया का जीवन भी ऐसा ही है। इतनी यातनाएं, कितनी बार उसको बेचा गया और लास्ट में वो संत बन गई। सेंटेविला उसी तरह भारत की हिंदू धर्म में कितनी सारी स्त्रियां हैं। जब रामकृष्ण परमहंस का विवाह हुआ मां शारदा के साथ, तो पहली रात उन्होंने शारदा मां से प्रश्न पूछा था, क्या तुम मुझे गिराने आई हो? उसने कहा था, नहीं, मैं तुम्हें आपको अपनी आध्यात्मिक साधना में मदद करने आई हूं। पहली रात अपनी पत्नी की क्या की उन्होंने? पूजा। इसी तरह से असंख्य स्त्रियां, नारियां, गार्गई, मैत्री, सुलभा, मीरा भारत की इस भूमि पर हुई है, जिन्होंने कुछ धारणाओं से, चाहे भक्ति की या उस धर्म की, से अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। तो इस ब्रह्मा कुमारी जीवन में भी हमें ऐसी कुछ धारणाओं को मजबूत करना है जिससे जीवन में दिव्यता आए। तो आज हम ऐसी 12 धारणाओं की चर्चा करेंगे, 12 ऐसी मर्यादा कहो, धारणा कहो, सिद्धांत कहो, प्रिंसिपल्स कहो, बातें कहो, एक ब्रह्मा कुमारी अर्थात क्या, किसको कहा जाएगा। कल भी हम सुना रहे थे कि महात्मा बुद्ध के आश्रम में जब उन्होंने पहली बार स्त्रियों को एंट्री दी तो उन्होंने कहा था, मुझे लगा मेरा ये धर्म 5000 वर्ष तक चलने वाला है, परंतु क्योंकि अभी स्त्रियां आ गई केवल 500 वर्ष चलेगा और 500 वर्ष के बाद बौद्ध धर्म समाप्त हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा, भारत में तो रहेगा ही नहीं। और वैसा ही हुआ। परंतु भगवान ने आकर उल्टा कर दिया। भगवान ने स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को ही आगे रख दिया, जबकि उन्होंने कहा था इनके आने के वजह से धर्म लंबा समय नहीं चलेगा। और भगवान की स्ट्रेटेजी देखो कैसी है। तो ऐसी हम 12 बातें देखेंगे। अपनी डायरी में शब्द लिखना है ब्रह्मा कुमारी, BRAHMARAQUMARI, QUMARI, टोटल 12 अक्षर है ब्रह्मा कुमारी के। एक एक अक्षर से एक एक धारणा। सबसे पहला है बी। बी से सबको पता है, बी अर्थात बी से क्या क्या बाबा, बी से हम धारणाएं पूछ रहे। ब्रह्मचर्य, सर्वोच्च धारणा, सबसे ऊंची धारणा, ब्रह्माचारी बनने की धारणा है ब्रह्मचारी बनना। जब तक ब्रह्मचारी नहीं तब तक ब्रह्माचारी भी नहीं। कितनी दादियों का अनुभव है, बहुत सहन किया। कितनी माताओं का अनुभव है जो कि किसी भी किताब में लिखा नहीं गया अभी तक। ऐसे कुछ कुछ अनुभव है, इतनी कुछ कुछ उनको सताया गया, कहीं पर भी लिखा नहीं गया है। बांध कर उनको मांस खिलाया गया ताकि इस ब्रह्मचर्य को छोड़े, ताकि इस दादा लेकराज के पीछे जाना छोड़े। उनको मारा गया, मांत्रिक तांत्रिक को बुलाया गया, बहुत सारी बातें हैं। यज्ञ का इतिहास बहुत बड़ा है। ब्रह्मा कुमारी अर्थात सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। जब तक अखंड ब्रह्मचर्य नहीं तब तक ब्रह्मा कुमारी जीवन नहीं। बाकी सब कुछ है, मुरली सुनाना, मुरली सुनना, सेवाएं करना, परंतु मुख्य ब्रह्मचर्य ही खंडित हो रहा है सूक्ष्म रूप से। तो ये ब्रह्मा कुमारी जीवन नहीं। चाहे कोई कितनी भी सेवा कर ले, कितने ही प्रोग्राम कर ले और जो करना है कर ले, परंतु यदि पवित्रता ही कहीं ना कहीं खंडित हो रही है तो वो ब्रह्मचर्य, तो वो ब्रह्मा कुमारी जीवन नहीं। इसके लिए सबसे पहले इस धारणा को मजबूत करना है। जगदीश भाई की लिखी एक किताब है ब्रह्मचर्य, किस किस ने पढ़ी है? एक इधर, किस किस ने पढ़ी है? दो, 3 बस सबसे पहला काम वो करना है कल से, यहां से जाने के बाद। जब तक वो क्या है ये समझ में नहीं आता है, उसकी धारणा भी नहीं हो सकती। और जब तक वो यही पता नहीं वो है क्या वास्तविक, तो उसका खंडन होगा और पता भी नहीं चलेगा। उसका खंडन होते रहेगा और हम सोचते रहेंगे हम में पवित्रता बहुत है। सबसे पहली धारणा ब्रह्मचर्य, इस पर हम फिर आएंगे थोड़ी देर के बाद। दूसरा है बी आर, आर अर्थात रिलेशनशिप। एक ब्रह्मा कुमारी और एक स्टूडेंट, एक ब्रह्मा कुमारी और दूसरी ब्रह्मा कुमारी, एक ब्रह्मा कुमारी और सीनियर ब्रह्मा कुमारी, एक ब्रह्मा कुमारी और कन्या, एक ब्रह्मा कुमारी और बाहर के लोग, एक ब्रह्मा कुमारी और मधुबन निवासी। जितने संबंध है ऊपर नीचे दाएं बाएं दूर, ये सारे संबंधों में क्या चाहिए? एक बात चाहिए। कौन सी? एक ही बात सबसे आवश्यक है, बाकी सब तो है बहुत, पर इस संबंध में, सारे संबंधों में एक बात चाहिए। कौन सी? कौन सी? हाँ, न्यारापन, डिटैचमेंट। दादी जानकी के पास विदेश की कुछ बहनें आई थी, दो बहनें शायद, झगड़ा हो गया था दोनों का। तो दादी ने कहा था ठीक है झगड़ा चलेगा, लगाव नहीं चाहिए। ऑप्शन यदि दिया जाए झगड़ा और लगाव, क्या लेंगे बताओ? ऑप्शन ए झगड़ा, ऑप्शन बी लगाव, अटैचमेंट, आसक्ति। नहीं नहीं, दोनों में से एक लेना है। दोनों नहीं चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, पर दो ऑप्शन है, दोनों ही लेना है, दोनों में से एक तो लेना है, कौन सा लेंगे? हाँ, कौन सा लेंगे? दोनों नहीं लेना अच्छी बात है, पर यहां ऑप्शन आपको कंपलसरी एक सिलेक्ट करना है, तो दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? एक तरफ है बहुत लगाव एक आत्मा से और दूसरी तरफ है बिल्कुल दूर, प्रिफरेबल कौन सा है? कुमारियां कौन सा लेगी? झगड़ा, कुमारियों ने झगड़ा चूज किया, आप बताओ कौन सा लेंगे? झगड़ा ठीक है, क्योंकि आसक्ति, लगाव, अटैचमेंट बहुत बेचैनी है, बहुत अपेक्षा है, फिर अपेक्षा भंग है, फिर दुख है, फिर डिप्रेशन है, फिर उदासी है, रूठना है, रूसना है, आंसू है। लड़ाई झगड़े में आंसू विसू कुछ नहीं है, झगड़ा हो गया वो उधर हम इधर। वैसे तो दोनों ही नहीं होने चाहिए, परंतु आसक्ति जो है, लगाव जो है, झुकाव जो है, बहुत पीड़ा देता है। इसके लिए सारे संबंधों में डिटैच। कोई बहुत अच्छा सेवादारी, अभी अभी मुरली चली थी कुछ दिन पहले, ये सेवादारी बहुत अच्छा है, ये शिक्षक सेवादारी बहुत अच्छी है, ये है महा महा महापाप। ये शब्द कहे थे बाबा ने, कौन से वाक्य के लिए? इसके लिए, ये अच्छा है। दो तीन संडे पहले की मुरली। तो कुमारियों का अच्छा है झगड़ा, पर ज्यादा झगड़ा नहीं करना, हमने एक बार मधुबन में एक दृश्य देखा था, दो बहनें बैठी थी और दोनों आपस में एक दूसरे को खिला रही थी चम्मच से, वो उसको खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी, वो उसको खिला रही थी, प्यार, आपसी प्यार, बहुत ही ज्यादा प्यार था आपस में। जहां अटैचमेंट होगी वहां दुख होगा, जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख, जितना ज्यादा अटैचमेंट उतनी ज्यादा अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस, और जब एक्सपेक्टेशन टूटेगी तो दुख होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी है, शोशीर कविता, द लास्ट पोएम। एक युवक है और एक युवती है, उन दोनों को आपस में बहुत प्यार है और दोनों शादी करना चाहते हैं। वो युवक जो है वो गरीब है, वो स्त्री जो है वो बहुत अमीर है। तो वो स्त्री उस पुरुष से कहती है कि हम दोनों शादी करेंगे। वो पुरुष भी उससे प्रेम करता है, वो भी कहता है हाँ हम शादी करेंगे, परंतु वो स्त्री कहती है मेरी एक शर्त है। वो शर्त ऐसी है कि शादी के बाद हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे। तो पुरुष कहता है व्हाट, ऐसी कौन सी शादी है, फिर शादी क्यों कर रहे हैं, यदि हम साथ में रहेंगे ही नहीं तो हम क्यों शादी करें। वो स्त्री कहती है मेरी ये एक ही शर्त है, तुम देख लो, करना है तो करो, नहीं तो नहीं करो, बाकी मेरा केवल तुमसे प्यार है, और यदि तुमने शादी नहीं की तो सारी उम्र केवल तुम्हारी याद में रहूंगी अविवाहित, पर यदि शादी करूंगी तो हम अलग अलग रहेंगे, तुम्हारे लिए एक महल बना के दूंगी उस ओर, बीच में एक झील होगी, मैं इस ओर तुम उस ओर, कभी आप उधर से आ रहे हो मैं इधर से आ रही हूं तो हम दोनों आपस में मिल लेंगे, तुम उधर से नौका विहार मैं इधर से नौका विहार, बोटिंग, हाय हेलो ओम शांति और आगे, परंतु एक साथ नहीं रहेंगे, ये मेरी शर्त है। देख लो, तुमको किसी और से शादी करनी है तो कर लो, मैं कुंवारी रहूंगी और केवल तुम्हें वो अपना पति समझती हो और तुम्हारी याद में रहूंगी। तो उसने कहा अब क्या किया जाए, ये कैसी शादी है, आखिर क्यों। तो वो कहती है जब दो व्यक्ति आपस में समीप आ जाते हैं तो उनके बीच में लगाव उत्पन्न होता है और फिर धीरे धीरे घृणा जन्म लेती है और धीरे धीरे वो जो फ्रेशनेस है, जो वो पवित्रता है संबंध की, धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए हम शादी तो करेंगे पर तुम उधर और मैं इधर, बीच में झील, तुम इधर से नौका विहार हम उधर से नौका विहार, हाय हेलो बाय। चाहे सेवा केंद्र में रहे, चाहे घर में रहे, चाहे मधुबन में, वो उधर और हम इधर, कहीं पर गए सेवा की, काम पूरा हुआ, बाय बाय ओम शांति, वो उधर हम इधर, फोन नहीं करते बैठना, क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी क्या कर रही हो, अभी क्या चल रहा है मधुबन में, हम जब आए थे तो ये चालू था, अभी क्या चालू है, लगाओ, आसक्ति, अटैचमेंट, चाहे घर में चाहे सेवा केंद्र में, कहीं पर भी रहते हुए संबंधों में क्या चाहिए, अटैचमेंट, न्यारापन, वो उधर और हम इधर और बीच में, बीच में क्या, झील, कौन सी, बाबा नाम की झील। दोस्ती मत करते बैठना किसी से, दोस्ती कर ली तो गए, फिर वही चाहिए, फिर उसी की याद, सूक्ष्म याद, बी आर, आर अर्थात रिलेशनशिप में डिटैचमेंट, बी आर ए, ए अर्थात अहंकार मुक्त, सूरज भाई जी हमेशा एक उदाहरण देते हैं। एक ब्रह्मा कुमारी बहन है जिसने बहुत सेवाएं की, देश विदेश में सेवाएं की, बहुत सारे सेंटर खोले, बहुत सारी कन्याओं को तैयार किया, फला ढला बहुत कुछ किया। उस बहन ने शरीर छोड़ा और वो बाबा के पास पहुंची। वतन में बाबा ने उस बहन से पूछा, बच्ची तुमने क्या क्या किया बताओ। वो खुद नहीं बता रही है, बाबा ने पूछा कि तुमने क्या क्या किया बताओ। तो उस बहन ने बताना चालू किया, बाबा मैंने इतनों को कोर्स कराया, बाबा मैंने सेंटर खोले, फिर प्रोग्राम किए, फिर इतनी कन्याओं को तैयार किया, फिर ऐसा किया, फिर वैसा किया। ये बताना चालू कर दिया उसने, खुद ने नहीं किया, पूछा गया इसलिए बताया। वो बता रही है, बता रही है, बता रही है, और लास्ट में बाबा ने कहा, बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया? ये सब कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। तो तुमने क्या किया? पूरा कर दिया ना। संगम युग पर जो भी हम कर रहे हैं, सेवाएं, ज्ञान, योग, सब क्या है? कृपा। आज सुबह की साकार मुरली, ये बाप की कृपा है। पढ़ाई, ये पढ़ाई क्या है? बाबा की कृपा। तो उसकी कृपा को नहीं भूलना। हम तुम मात पिता हम बालक तेरे, आज सुबह मुरली में आया, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। ये उसकी कृपा है कि हम पुरुषार्थ कर रहे, ये उसकी कृपा है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक है, ये उसकी कृपा है कि हम ज्ञान और योग कर पा रहे, ये उसकी कृपा ही समझना है। हॉस्पिटल में एक बहन आती है, एकदम यंग, 30 साल भी उम्र नहीं होगी, बहुत सेवाएं करती थी। एक बार स्कूटर पर जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद दोनों हाथ और दोनों पैर पैरालिसिस, ये उंगली इतनी भी नहीं हिलती, ऐसी रहती है बस। और अब वो परमानेंट होल लाइफ रहेगा। सारा कुछ इलाज करा लिया दुनिया भर का। उसकी लौकिक बहन है, वो उसकी सेवा करती है, बस ऐसे पड़े रहना, इधर घुमाओ उधर घुमाओ, हाथ से कुछ नहीं कर सकती। कभी भी कुछ भी किसी को भी हो सकता है। इसके लिए उसकी कृपा है कि हम ठीक है, उसको इस बात का धन्यवाद। परंतु एक बात है, यह सब होने के बाद भी वो जो बहन है बहुत नशे में है, उसको कोई दुख नहीं है। अंदर से होगा शायद, परंतु ऊपर से नहीं दिखता है। स्थिति बहुत पावरफुल है। उसकी लौकिक बहन उसको मुरली पढ़ा के सुनाती है। वो पढ़ नहीं सकती है क्योंकि मुंह में भी पैरालिसिस का थोड़ा असर है, और वो ठीक होने वाला नहीं है, और दूसरी कोई बीमारी नहीं है, इसलिए मृत्यु भी सामने तुरंत नहीं आएगी। दूसरी और कोई बीमारी नहीं है, परंतु हाथ और पैर, दोनों पैर, चारों के चारों पैरालिसिस। थाली बिठाया जा सकता है, बिठाने के लिए 4 लोग चाहिए। उठा के चेयर पे बिठाओ और घुमाओ और फिर वापस लाओ। इसके लिए अहंकार मुक्त। किस बात का अहंकार? ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। हम न भी हो तो भी होगा, वो तो हमारा भाग्य है कि मुझे वो काम करने के लिए दिया गया है। अगर वो चाहे तो किसी और को भी नियुक्त कर सकता है, और हमसे अच्छा। BRAH अर्थात हिम्मत। ये मार्ग अंगारों पर चलने का मार्ग है, आग पर चलने का मार्ग है। यहां क्या चाहिए? बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत हिम्मत। छोटा मोटा होगा तो छोड़ देगा। पग पग पर अग्नि परीक्षा, पग पग पर सिक सिक छुक छुक मरमर। इसलिए सभी कुमारियां तैयार है, तैयार है ना चलने के लिए? आग है, अंगारे, पैर जलेंगे, तैयार है? क्यों क्यों तैयार है? डर नहीं लगता? जाके राखे साइया, मार सके न कोई। जीसस क्राइस्ट ने अपने शिष्यों से कहा है, जाओ जाकर मेरा संदेश सबको सुनाओ। उन्होंने कहा, हम कैसे सुनाएंगे, लोग क्या कहेंगे? वो लोग पहले से ही तुम्हारे विरोधी है। वो कहता है, गो, योर वेरी हेयर इज नंबर्ड। तुम्हारे सिर पर जितने बाल है ना, वो एक एक गिनती किए हुए, एक बाल भी कम नहीं होगा। योर वेरी हेयर इज नंबर्ड, एक बाल भी कम नहीं होगा, अर्थात तुम्हें जरा भी चोट नहीं आएगी। जाओ, जो भगवान के मार्ग पर निकल जाते हैं, हिम्मत स्वतः ही आएगी। वैसे ही विदेश में एक दूसरी महिला थी, जॉन ऑफ आर्क। उसके साथ भी, उसको भी जलाया गया जिंदा, परंतु अपनी धारणाओं को नहीं छोड़ा। आखिरी दम तक पूरी भीड़ थी, उस भीड़ में उसने कहा, मुझे एक बार क्रॉस दिखा दो, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस। और एक व्यक्ति दूर से वो क्रॉस लेकर खड़ा होता है, और वो क्रॉस देखते देखते जल के भस्म हो जाती है, परंतु झुकती नहीं है। जॉन ऑफ आर्क, रानी लक्ष्मीबाई, भारत, अक्का महादेवी, भारत, मुक्ताबाई, बहिनाबाई, भारत की, महाराष्ट्र की बहुत सारी स्त्रियां, कान्हो पात्रा, नाम सुना है? कान्हो पात्रा महाराष्ट्र की एक संत महिला हुई है, वेश्या की पुत्री थी, बचपन से ही लोगों ने बहुत सताया, परंतु उसके हृदय में ऐसी भक्ति ईश्वर की, नको देवराया अंताता बाहु प्राणहा सर्वता जाहु पाहे। हे प्रभु, अंत ना देख, इतना लोग पीड़ित करते हैं, परंतु अनन्य भक्ति, अथाह भक्ति। उस वेश्या के घर में उसने जन्म लिया और परमात्मा प्रेम का प्रतीक वो बनी। एच अर्थात हिम्मत, चलते जाना, हिम्मत स्वतः आएगी। आगे बढ़ते जाना, हिम्मत अपने आप आएगी। बी आर ए एच एम, एम फॉर मुरली, एम फॉर मुरली। क्या करेंगे मुरली का, क्या करेंगे? मधुबन में हम लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें 108 विधियां बनाई है मुरली चिंतन की, 108 अलग अलग मेथड्स। एक ही रीति से मुरली पढ़ते नहीं रहना है, मुरली पढ़ना, मुरली चिंतन करना, मुरली मनन करना, अध्ययन करना, और अलग अलग रीति से, और ना ही खुद परंतु सब स्टूडेंट्स को कराना। एक विधि है कॉन्ट्रास्ट मेथड, जिससे बुद्धि को धक्का लगे। कॉन्ट्रास्ट अर्थात बाबा ने क्या क्या कॉन्ट्रास्ट आज की मुरली में बताया है, जैसे कि भक्ति की कौन सी बातें आज बताई है और ज्ञान के साथ जोड़ी है, कॉन्ट्रास्ट कौन कौन सा है। दूसरी मेथड है एग्जाम्पल मेथड। एग्जाम्पल मेथड अर्थात बाबा ने आज की मुरली में कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। सन्यासियों का उदाहरण दिया है, भक्तों का उदाहरण दिया है, कंट्रास्ट मेथड, एग्जाम्पल मेथड, डायग्राम मेथड, ड्राइंग मेथड, फ्लो चार्ट मेथड। आप यदि मधुबन आए तो विदेशी लोग मुरली कैसे लिखते हैं, एक पेपर ले लेते हैं और उसमें खाली डायग्राम बनाते हैं, बस पिक्चर बनाते हैं, लिखते कुछ भी नहीं। कोई कोई खाली फ्लो चार्ट बनाते हैं, एरोज, इधर एरो, उधर एरो, उधर एरो, इधर एरो। मुरली चिंतन अलग अलग विधि से करना है, एक ही तरीके से नहीं, एक ही तरीके से उसको पढ़ना भी नहीं है। जो पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले से ज्यादा पढ़े हो। एक स्कूल का टीचर होता है, उसको मैथमेटिक्स सिखाना है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को, तो उसकी तैयारी स्टूडेंट से ज्यादा होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मुरली आज सुनानी है तो 6 बजे उठकर मुरली पढ़ ली और 7 बजे जाकर सुना दी। उसमें कितनी सारी नई नई बातें हैं, वो पूरी मुरली और उसमें पूरे मुख्य पॉइंट्स हमको पता रहना चाहिए, ताकि हम उसको हाईलाइट करके उनको एक्सप्लेन कर सके। और नई नई विधियों से, एक ही मेथड से नहीं, नई नई टेक्निक्स, नई नई बातें उसमें होनी चाहिए। वर्ड मेथड, एक वर्ड लेना और उसका चिंतन करना। जैसे आज की मुरली होली हंस, हंस क्या है, हंस की विशेषताएं क्या है, हंस किसको कहते हैं, संसार में हंस की क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल चाहिए, उस विषय में सारी जानकारी प्राप्त करनी है, तो ही उसको अच्छे से समझाया जा सकेगा। तो एम अर्थात मुरली चिंतन, एम अर्थात मुरली मनन, मुरली अध्ययन और मुरली चर्चा। रात में सोने से पहले सेवा केंद्र में 2 लोग बैठकर मुरली का डिस्कशन करें कि बाबा ने ये बात क्यों कही, ऐसा क्यों कहा, क्या कारण है, इस शब्द का क्या अर्थ है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो कभी सुने ही नहीं होंगे, क्योंकि वो अलग अलग भाषाओं के आते हैं। बाप को उकीर रहता है कि बच्चों को वर्षा दे, उकीर, बाप तुम्हें चौप चीनी खिलाते हैं, चौप चीनी, ये है ज्ञान का वखर, वखर। नए नए बहुत सारे, ढेर सारे मुरलियों में शब्द आते हैं, उन शब्दों का अर्थ ढूंढना। अर्थ पता नहीं है तो फोन कर पूछो क्या अर्थ है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये गीत कहां से आया है, किस धर्म के लिटरेचर से आया है, हिंदू धर्म में तो नहीं है, कहां से आया है, सिख धर्म से आया है, गुरुबानी से आया है, इस तरह से बहुत सारे शब्द है, बहुत सारे गीत है, कहावतें हैं, मुहावरे हैं मुरली में आने वाली, नए नए नाम हैं। कुछ दिन पहले कीचक को याद किया था बाबा ने, कौन था कीचक, कौन था, मुरली सुनाई सबने, ढूंढना पड़ेगा। नया शब्द आया आगे बढ़ना ही नहीं जब तक पूरा रिसर्च ना कर लो, कंप्लीट रिसर्च, क्योंकि स्टडी है, यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट है, तो स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं अरे अर्थ पूरा समझ लिया, वाक्य तो समझ में आ गया, चलो आगे। स्मार्ट स्टूडेंट अर्थात उसको सब पता रहना चाहिए, कहां क्या है, फुल स्टडी। तो एम अर्थात मुरली, एम के बाद क्या है, बी आर ए एच एम ए, फिर से ए, ए से मुख्य चीज रह गई अमृत वेला, ए फॉर अमृत वेला, अमृत वेला। यहां कराई थी या कहां दूसरी जगह पर एक क्लास हुई थी अमृत वेला पर? अमृत वेला में दो तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला, कंप्लीट अशरीरीपन का अनुभव, शरीर से पूरा डिटैच। कुमारी अमृत वेला करती है? कौन कौन रोज करता है, हाथ खड़ा करो। और बाकी कितने बजे उठती है? 4 बजे कि 5 बजे? 5 बजे कौन उठता है? 6 बजे कौन उठता है? 7 बजे? 8 बजे? किसी में भी हाथ नहीं उठा रहे, सारी रात भर जागते रहते हैं। इसका मतलब लाइट माइट स्थिति। अमृत वेला में सबसे पहला अशरीरीपन, अमृत वेला में परम धाम की जो स्टेज है उसमें लंबा समय टिकने का अभ्यास, परम धाम में। उसकी भी अभी अभी ड्रिल कराई थी कल पर, तो कहीं पर अमृत वेला कमेंट्री में। तीसरा, 5 स्वरूपों का अभ्यास, जैसे अभी हमने देवियों का अभ्यास किया, ये एक था। इसी तरह से अलग अलग अभ्यास किए जा सकते हैं। 7 गुणों का अभ्यास, या दिव्य गुण में से कोई भी एक गुण लेना, उसका अभ्यास अलग अलग। और लास्ट, सकाश, सारे विश्व को सकाश। ये 3-4 चीजें हमारे अमृत वेला में मस्ट है, होना ही चाहिए। नींद में ना जाए, अगर नींद आती है तो स्वयं को अलर्ट करना है, उठाना है, जगाना है। ब्रह्मा के कैसे, कीपिंग चार्ट, अपना एक व्यक्तिगत चार्ट रखना, और वो चार्ट खुद ही बनाना है, वो नहीं जो मधुबन से आता है या कहीं से आता है रेडीमेड। अमृत वेला किया, यस नो, कितना परसेंट, 50%, वो वाला चार्ट नहीं। अपना रोज एक नया चार्ट बनाना है, अपनी लाइफस्टाइल, अपने दिनचर्या, अपने सेवा केंद्र के अनुसार, उसमें क्या क्या किया और कैसे कैसे किया। अगर चार्ट नहीं लिखना है, एक दूसरा ऑप्शन है, डायरी लिखना। क्या करेंगे? डायरी लिखना। डायरी में जैसे हम सब कुछ बाबा को बता रहे हैं, बाबा लिखा और चालू किया। हाँ, तो डायरी लिखना। कैसे लिखेंगे? पहले शब्द लिखना बाबा, और नीचे सब कुछ लिखना, आज सुबह से लेकर अब तक क्या क्या किया, कितने बजे उठे, फिर अमृत वेला, फिर मुरली, फिर किससे मिले, कौन सी सेवाएं की, कहां कहां गए, सारा वर्णन लिखना, और लास्ट में थैंक यू लिखना और गुड नाइट लिखना। यदि किसी का नाम लिखने से डर लगता है तो कोड नंबर XY लिखना। यदि डर है कि हमारी डायरी कोई ले ले तो, किसी के हाथ में आ जाए तो क्या लिखेंगे? आ बा का XYZ टॉम डिक हैरी। कीपिंग चार्ट के यू अर्थात उमंग उत्साह। बिना उमंग उत्साह के कोई भी सेवा सफल नहीं होती है, और यदि आंतरिक हम दुखी है तो सेवा कभी भी सफल नहीं होगी। सेवाओं करने के लिए, नवीनता लाने के लिए उमंग उत्साह। हर चीज में नवीनता लानी है, योग में, ज्ञान में, सेवाओं में, स्टूडेंट्स को नई नई बातें, उनको उमंग उत्साह में रखना है तो खुद उमंग उत्साह चाहिए। UKUM, ये दूसरा M आ गया। पहला M था मुरली, दूसरा M है खुद को निरंतर मधुबन निवासी समझना। मधुबन अर्थात स्टेज पर है, मधुबन अर्थात सारी दुनिया की आत्माएं देख रही है, मधुबन अर्थात सेवा केंद्र को मधुबन समझना। ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा है, सारी दुनिया हमको देख रही है, मधुबन। उसके बाद एम के यू एम ए, और एक ए आया, ए अर्थात आकर्षण मुक्त। संसार में हजारों आकर्षण है, कोई ना कोई आएगा बीच में, आकर्षणों से स्वयं को मुक्त रखना। के यू एम ए, फिर से आर, आर अर्थात रॉयल। एक है चंचलता, एक है रॉयल्टी, एक है बहुत हंसी मजाक खेलकूद और दूसरा है सीरियसनेस। एक है भागना इधर भाग उधर भाग, एक है फरिश्तों की चाल। बाबा कहते थे मम्मा जब धरती पर चलती है तो धरती कितनी खुश होती है, चलने का भी आवाज नहीं, मम्मा जब चलती थी तो इतना शांति से। रॉयल, हर चीज में रॉयल, रॉयल अर्थात मांगना नहीं किसी से कुछ, दे दो दे दो दे दो, कुछ भी न मांगने वाली। और जहां पर संपूर्ण ब्रह्मचर्य और संपूर्ण पवित्रता है, उस सेवा केंद्र पर सब कुछ अपने आप चरणों में आके गिरेगा, किसी को मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रॉयल, आर, आर के बाद आए, आए अर्थात इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्शन अर्थात अंतर्मुखी, अंतर्मुखता, बहुत ज्यादा बाह्यता, बहुत ज्यादा आवाज, बहुत ज्यादा बातें इंपॉर्टेंस कम कर देता है व्यक्ति का। जो व्यक्ति जितना शांत रहता है, अंतर्मुखी रहता है, उतना अच्छा, जितना एकांत में रहता है उतना अच्छा। और लास्ट है आर आई, हो गया 12। अभी एक टॉपिक रह गया है जो हमने कहा था बाद में फिर आएंगे, वो है सबसे पहला ब्रह्मचर्य। बाबा ने प्यूरिटी के विषय में बहुत कुछ कहा है, बड़ी बड़ी मुरलियां हैं प्यूरिटी के विषय में। आज सुबह भी हमने क्लास की, 21 प्रकार की पवित्रता है, पवित्रता। परंतु बाबा ने ब्रह्मचर्य के विषय में बहुत ज्यादा नहीं कहा है, उसका विस्तार नहीं किया है मुरलियों में, ना तो साकार में किया है ना व्यक्त में किया है। हाँ, मुरलियों में इतना जरूर आया, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है, क्रिमिनल आए, पांचवी मंजिल से गिरना, चकनाचूर, ये सारे शब्द आए हैं, परंतु विस्तार नहीं किया है। उसका भी कुछ कारण है। तो ब्रह्मचर्य की धारणा में मुख्य रूप से 8 चीजें आती है। इन 8 में से कोई भी एक चीज यदि हो रही है, सभी कुमारियां नोट करके रखेंगी अपनी डायरी में, ब्रह्मचर्य की 8 बातें, सभी डायरी ले लो और पेन ले लो। इन 8 में से कोई एक बात भी हो रही है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। कब हो रही है? किसी भी समय, किसी भी स्थान में और किसी भी परिस्थिति में हो रही है। किसी भी समय, एनी टाइम, एनी प्लेस, एनी सर्कमस्टांसेस, तो वो क्या है? ब्रह्मचर्य का खंडन। उसको ब्रह्मचारी नहीं कहा जाएगा। कोई भी एक बात अगर हो रही है तो, एक उदाहरण है कि एक सन्यासी तप करते रहता है एक जंगल में, एकांत में। बहुत बड़ा तपस्वी, युवा है, जवान है, परंतु तप करते बैठा है। और वहां कोई नहीं है। धीरे धीरे उसकी तपस्या कठोर होती जा रही है। पहले थोड़ा भोजन करता था, फिर कम कम कम। उसी जंगल में एक ऋषि कन्या रहती है, और वो ऋषि कन्या उस तपस्वी को एक बार देखती है तो उसको लगता है कि मुझे इसकी सेवा करनी चाहिए। इसके लिए वो ऋषि कन्या चुपके से उसकी सेवा करनी चालू करता है। कभी उसके लिए फल लाके रखती है, कभी उसके लिए जल लाकर रखती है, परंतु वो एक चीज का ध्यान रखती है कि वो सन्यासी मुझे ना देखे, वो युवा योगी मुझे ना देखे। शायद वो देख ले तो उसकी तपस्या भंग हो जाए। तो इस तरह रोज वो उसकी सेवा करती है। ये कहानी शास्त्रों में आती है, उसमें पहले ऐसा दिखाया है कि वो स्त्री बहुत कुरूप होती है, परंतु जब वो सन्यासी बहुत तपस्या करता है तो इंद्र का सिंहासन डोलता है, तो इंद्र उसकी तपस्या भंग करना चाहता है। इसलिए एक बार स्त्री पानी भरने एक सरोवर में जाती है, और जैसे ही पानी को हाथ लगाती है उसका चेहरा रूप बदल जाता है, बहुत अच्छी हो जाती है, और उसे भी पता नहीं होता है, और वो उस सन्यासी की सेवा करती है। एक बार जब वो कोई फल वहां रख रही होती है, अचानक सन्यासी की आंख खुलती है और वो उसे देख लेता है, और जैसे ही देखता है फिर आंख बंद कर देता है और अपनी तपस्या चालू। वो कन्या अपने आश्रम में जाती है और उसे बहुत आत्मग्लानी होती है कि मेरी वजह से उसकी तपस्या भंग हुई क्योंकि उसने मुझे देख लिया। परंतु अंदर ही अंदर उसे थोड़ी खुशी भी होती है कि उसने मुझे देखा तो सही, मैं कब से उसकी सेवा कर रही हूं, उसको भी तो पता चले कि मैं हूं। इस बात की उसको बहुत खुशी भी होती है अंदर से, परंतु आत्मग्लानी ज्यादा होती है और वो रातों रात ये फैसला करती है कि मुझे ये जंगल छोड़कर हमेशा के लिए चले जाना है, और वो हमेशा के लिए चली जाती है, वापस नहीं आती कभी। सन्यासी फिर अपनी तपस्या में मगन, अब वो अपनी तपस्या और कठोर कर देता है। धीरे धीरे सब भोजन छोड़ देता है, केवल हवा। धीरे धीरे इतनी तपस्या करता है कि पूरा क्या कहते हैं पर्वत बन जाता है उसके शरीर के ऊपर। ऐसी तपस्या जब इंद्र देखता है तो इंद्र प्रकट होता है और पूछता है, तुमको क्या चाहिए, मांगो, तुमको जो चाहिए मैं दूंगा, क्योंकि आज तक ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की। तो वह सन्यासी को पूछता है, क्या तुमको स्वर्ग चाहिए? सन्यासी कहता है, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए। इंद्र को आश्चर्य होता है, स्वर्ग नहीं चाहिए तो इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए? मैं वो भी दे सकता हूं। वो कहता है, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। फिर इंद्र को आश्चर्य होता है, फिर तुमको चाहिए क्या, इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? तो वो सन्यासी कहता है, वो कन्या कहाँ है? क्या कहता है? वो स्त्री कहाँ है? इच्छाएं बहुत सूक्ष्म है, काम बहुत सूक्ष्म है। सबसे पहली चीज ब्रह्मचर्य में, ब्रह्मचर्य का खंडन, दर्शनम, पहला है दर्शनम, अर्थात देखना। जो आत्माओं ने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया है, परंतु ब्रह्मचर्य थोपा गया है, स्वयं धारण नहीं किया है, थोपा गया है, जबरदस्ती लिया हुआ है पवित्रता का व्रत, वहां व्यक्ति अपनी वासना को देखकर तृप्त करता है। दैहिक दृष्टि से देखना, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये सुंदर ये असुंदर, ये छोटा ये बड़ा, ये काला ये गोरा, चमड़ी के रंग को देखता है, चमड़ी को देखता है। दैहिक दृष्टि से देखना क्रिमिनल आय से देखना है। एक मुरली है जिसका हम आपको नाम बताते हैं, आप जाके पढ़ लेना, 9 जनवरी 1982। पांच प्रकार के ड्रेस बाबा ने उसमें सुनाए हैं। एक है मिट्टी का ड्रेस, कुछ कुछ बच्चे मिट्टी का ड्रेस पहनते हैं देहभान का। दूसरा है चमड़ी का ड्रेस, क्रिमिनल आए। तीसरा है बदबू वाला ड्रेस, स्टेन, दुर्गंध। तीसरा है, चौथा है बदबू वाला ड्रेस, दुर्गंध, दुर्गंध और काले दाग वाला ड्रेस। एक है स्टेन्स, एक है काला दाग, और एक उसमें बताया खून वाला दाग, बार बार विकर्म। चमड़ी, मिट्टी, दाग, खून का दाग और बदबू, इस तरह से उसमें वर्णन है, पढ़ देना जाकर बाद में। देखना सन्यासियों के लिए नियम है, कोई स्त्री जा रही है एक बार देखना नॉर्मल, दूसरी बार उसी को देखना मुड़कर इच्छा, तीसरी बार देखना वासना। इसके लिए हम देखे तो केवल मस्तक मणि को देखें, यहां इधर से नीचे देखने की आवश्यकता नहीं। सेम नियम पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए, आत्मा को देखना, देह को नहीं। देह है ही नहीं, जैसे सब आत्माएं, कौन स्त्री कौन पुरुष, आत्मा है। अभी इस तन में एक अभ्यास हर एक को करना है, मैं आत्मा अभी इस तन में हूं, इसके पहले स्त्री के तन में, उसके पहले पुरुष के तन में, पीछे पीछे जाना है अभ्यास करते हुए, तो देह का भान टूटेगा। अब मैं आत्मा शरीर पुरुष के शरीर में हूं, इसके पहले स्त्री के शरीर में थी, उसके पहले स्त्री के शरीर, उसके पहले पुरुष के शरीर, ऐसे मैंने बहुत जन्म लिया है ये अभ्यास। तो पहला देखना, उससे ब्रह्मचर्य टूटता है दैहिक दृष्टि से, क्रिमिनल आय से। दूसरा है स्पर्शनम, टच करना, सुबह भी कहा था हमारा स्पर्श कैसा हो, पवित्र, जैसे मां का बच्चे को स्पर्श होता है वैसा, ऐसा स्पर्श ना हो कि जिसमें वासना हो, ये ब्रह्मचर्य का खंडन है। टच, ना हम किसी को टच करें, ना कोई हमें टच करे। तीसरा खेलना, साथ साथ खेलना, स्त्री और पुरुष आपस में साथ साथ, इंडोर गेम्स, एक्सटर्नल आउटडोर गेम्स, कोई भी खेल आवश्यकता नहीं है, साथ साथ खेलना। एक खेलना है मोबाइल का खेलना, मैसेज, एक मैसेज इधर से उधर, उधर से दूसरा मैसेज इधर, एक व्हाट्सएप इधर दूसरा इधर, यह भी क्या है खेल। चौथा है प्रशंसा, यह भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, दादी जान की हमेशा उदाहरण देती है, सबको पता होगा, दादी ने किसी का कोर्स कराया, ब्रह्मा बाबा के पास गई और बाबा को कहा, बाबा ये भाई बहुत अच्छा है, बाबा सुन रहे थे, बाबा ये भाई बहुत ही एकदम, उसने सब कुछ सुन लिया, एकदम धारणा पर चलने वाला है, बाबा सुन रहे हैं, बाबा ये भाई को एकदम तीर लग गया। बाबा ने कहा तीर उसको लगा या तुमको? बच्चे बाप से कहते बाबा ये बहन बहुत मीठी है, ये बहन बहुत अच्छी मुरली सुनाती है। बाप कहते हैं बच्चे मीठी बहन नहीं मीठी मुरली है। सुनाया होगा ये मुरलियों में आता है प्रशंसा, मन ही मन प्रशंसा करना या दूसरों के सामने प्रशंसा करना, प्रभावित होना, आंख डूब जाना। किसी में कितनी भी विशेषता रहने दो, किसने दी? बाबा ने दी ना, कितनी भी रहने दो। पहला देखना, दूसरा स्पर्श करना, तीसरा खेलना, चौथा प्रशंसा करना, ये चार। पांचवा गुह्य भाष्य, प्राइवेट टॉक्स, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन, गुह्य भाष्य, एकांत में अकेले में चुप के बैठकर बातें करना। गुह्य भाष्य, गुह्य अर्थात प्राइवेट, भाष्य अर्थात बातचीत, चिटचैट। वो चिटचैट मोबाइल पर भी हो सकती है, 3 मिनट से ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है किसी से। यदि सेवा का समाचार है तो ठीक है, बाकी हां और ना बस। टू मच इमोशनल एक्सपांशन, अपनी भावनाओं को आत्माओं के साथ शेयर करोगे तो भगवान के साथ शेयर करना कम हो जाता है। फिर वो व्यक्ति चाहिए उसको सब कुछ बताएंगे, दुखड़ा राम कहानी, ये हुआ वो हुआ वो हुआ वो हुआ, क्या करेगा वो? शिव बाबा का रिप्लेसमेंट है क्या, या कोई है संसार में उसका रिप्लेसमेंट? तो पांचवा है प्राइवेट टॉक्स। छठवा संकल्प, संकल्प करना समीप जाने का, मिलने का, प्लान करना एकांत में मिलने का। ब्रह्मचर्य का खंडन है किसी भी स्थान पर किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में। संकल्प करना समीप जाने का। सेवेंथ वास्तव में समीप जाना, किसी के वास्तव में समीप जाना। किसी ने लिखा है दोष ना स्त्री का है और ना ही पुरुष का, दोष उम्र का है। किसी ने लिखा है दोष ना स्त्री का ना पुरुष का, दोष किसका है? एज। हां जब बूढ़े सफेद बाल हो जाए ना तो बिठा देना किसी को बाजू में तो चलेगा, अभी नहीं, एज का दोष है, ऐसे संसार के लोग कहते हैं। सेवेंथ समीप जाना, जिसको संस्कृत में कहा जाता है अध्यावसाय। लास्ट वास्तविक काम क्रिया, उसके पहले 7 चीजें। ब्रह्मचर्य अर्थात केवल काम कटारी नहीं, दर्शनम, स्पर्शनम, केली, संस्कृत शब्द है केली अर्थात खेलना, स्तुति प्रशंसा, गुह्य भाष्य, अध्यावसाय संकल्प, अध्यावसाय काम निवृत्ति, ऐसे ये 8 चीजें हैं, 8 बातें हैं। इन 8ों में से कोई भी एक चीज कहीं पर भी किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में हो रहा है हो रही है तो वो ब्रह्मचर्य का खंडन है। अच्छा, ओम शांति।